दिन भर, तारीख 5 अगस्त दिन रविवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। वेनेजुएला के राष्ट्रपति के कार्यक्रम में ड्रोन से धमाका, राष्ट्रपति मादुरो का दावा जान लेने की थी कोशिश।
Han intentado asesinarme el día de hoy y no tengo duda que todo
सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 35 को चुनौती देने के खिलाफ जम्मू कश्मीर बंद प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे लोग।
कश्मीर की जो पोजीशन है उसको आप कमजोर करना चाहते हैं, वो हम नहीं होने देंगे।
और शिवराज सिंह चौहान को क्यों है मध्य प्रदेश में बीजेपी की वापसी का भरोसा, सुनवाएंगे खास बातचीत।
कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया था मध्य प्रदेश को, ना सड़क बची थी, ना बिजली मिलती थी, ना पानी का इंतजाम था। हमने पूरी स्थिति को बदल दिया।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार कुलदीप मिश्र से। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा है कि विस्फोटकों से लदे ड्रोन विमानों के जरिए उनकी हत्या की कोशिश की गई और इसके जिम्मेदार लोगों को वो माफी नहीं देंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि कोलंबिया और अमेरिका के समर्थन से दक्षिणपंथी गुटों ने ये हमला किया है। कोलंबियाई सरकार ने इस आरोप को निराधार बताया है। वेनेजुएला की राजधानी कैराकस में एक सैन्य परेड में हुए धमाके में 7 सैनिक घायल हो गए। विद्रोही समूह सोल्डाडोस डी फ्रेनलास ने कहा था कि उसके ड्रोन विमानों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही गिरा दिया गया। दक्षिणी सूडान में वर्षों से जारी गृहयुद्ध को खत्म करने के लिए विद्रोहियों और सरकार के बीच सत्ता में साझेदारी का समझौता किया जाना है, लेकिन इसे कुछ घंटों के लिए टाल दिया गया है। रविवार को सूडान की राजधानी खार्तूम में राष्ट्रपति सल्वा कीर और विद्रोही नेता रीक मचार इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इस समझौते का मकसद 5 साल से जारी गृहयुद्ध को खत्म करना होगा। इससे पहले हुए युद्ध विराम और सत्ता में साझेदारी के समझौते नाकाम रहे हैं और हिंसा दोबारा शुरू हो गई, लेकिन राष्ट्रपति कीर ने भरोसा जताया है कि इस बार समझौता कामयाब होगा क्योंकि यह उन पर थोपा नहीं जा रहा है। दक्षिणी सूडान में 2013 में गृह युद्ध शुरू हुआ था जब देश में बड़े स्तर पर नस्लीय आधार पर विभाजन हुआ था। इस गृह युद्ध में हजारों की संख्या में लोग मारे जा चुके हैं। दक्षिणी सूडान के मानव अधिकार आयुक्त बेनी माबोर ने कहा, अगर यह समझौता कामयाब रहा तो इसका दक्षिणी सूडान के लोगों के लिए मतलब होगा कि देश विकास और अपने ही भीतर विस्थापितों को फिर से बसाने की रास्ते पर आगे बढ़ेगा। देश लोकतांत्रिक पुनर्गठन और विकास के रास्ते पर लौटेगा। ये थे दक्षिण सूडान के मानव अधिकार आयुक्त बेनी माबोर के शब्द। स्विट्जरलैंड पुलिस ने बताया है कि एक पुराना सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार सभी 20 लोगों की मौत हो गई है। ये घटना शनिवार की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने बताया कि 1939 में बना यह विमान पहाड़ी इलाके पिज सेग्नस के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान लोकार्नो से ज्यूरिख जा रहा था। एक अधिकारी ने बताया कि हादसे की वजह पता करने में समय लगेगा क्योंकि इस पुराने विमान में ब्लैक बॉक्स नहीं था। स्थानीय पुलिस अधिकारी एंड्रियास टॉबलर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, राहतकर्मी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसकी जान बची हो। सभी 20 लोगों की हादसे में मौत हो गई है। विमान में 8 जोड़े सवार थे, कुल 11 पुरुष थे और 9 महिलाएं। ये थे स्थानीय पुलिस अधिकारी एंड्रियास टॉबलर के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बांग्लादेश में सड़कों पर सुरक्षा को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के 8वें दिन पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागे। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इससे पहले छात्रों से घर चले जाने की अपील की थी। हजारों स्कूली छात्र ढाका और देश की कुछ अन्य जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक और दूसरी समस्याएं पैदा हुई हैं। शनिवार को जब प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़कने से कुछ छात्र घायल हो गए थे तो सरकार ने मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगा दी थी। ये प्रदर्शन बीते रविवार को एक तेज़ रफ्तार बस की चपेट में आकर एक लड़की और एक लड़के की मौत के बाद शुरू हुए थे। प्रदर्शनकारी छात्र ट्रैफिक कानूनों को सख्ती से लागू करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने वी वॉन्ट जस्टिस यानी हम न्याय चाहते हैं के नारे भी लगाए। बताया जा रहा है कि सीरिया में संदिग्ध रासायनिक हथियार शोध केंद्र के प्रमुख की एक धमाके में मौत हो गई है। मसियफ शहर में अजीज असबर की कार में धमाका हुआ जिसमें उनकी मौत हो गई। एक विद्रोही समूह ने इस धमाके की जिम्मेदारी ली है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि इसके पीछे किसी और का हाथ भी हो सकता है। अजीज असबर एक ऐसा कथित संयंत्र चलाते थे जिसे अमरीका और पश्चिमी देश सीरियाई सरकार के रासायनिक हथियारों के कार्यक्रम से जोड़कर देखते हैं। नेटो ने कहा है कि पूर्वी अफगानिस्तान और उसके 3 सैनिकों की एक आत्मघाती हमले में मौत हो गई है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। दिन भर में हम आज आपको सुनवाएंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ खास बातचीत। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। विपक्षी दल कांग्रेस कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घेर रही है। हमारे साथी प्रदीप कुमार ने तमाम मुश्किल सवालों को मुख्यमंत्री के सामने रखा। ये पूरी बातचीत सुनने के लिए आपको करना होगा थोड़ा इंतजार। दिन भर की शुरुआत करेंगे एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा है कि ड्रोन हमले में उनकी जान लेने की कोशिश की गई। ये कथित हमला उस वक्त हुआ जब वो वेनेजुएला की राजधानी कराकस के एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे। मादुरो ने इस हमले के लिए कोलंबिया को जिम्मेदार बताया है, लेकिन कोलंबिया ने उनके आरोपों को आधारहीन बताकर खारिज कर दिया है। अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में 7 सैनिक घायल हुए हैं और इसे लेकर 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए अनंत प्रकाश से।
Vamos a apostar por el bien de nuestro país.
ये आवाजें थी वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर हुए कथित ड्रोन हमले की। सेना के एक कार्यक्रम के दौरान मादुरो अपना भाषण पढ़ रहे थे कि तभी उन्होंने नजर उठाकर देखा और एक धमाके की आवाज सुनाई दी। इस दौरान वह अपनी पत्नी और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ मौजूद थे। मादुरो ने इस हमले के लिए कोलंबिया के राष्ट्रपति को जिम्मेदार ठहराया है। मेरी हत्या करने के मकसद से एक हमला किया गया है। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इस हमले से जुड़े सभी पहलू बताते हैं कि इसके पीछे वेनेजुएला और कोलंबिया की दक्षिणपंथी ताकतें और कोलंबियाई राष्ट्रपति जुआन मैनुअल सेंटोस हैं। ये थे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के शब्द। कोलंबिया की सरकार ने राष्ट्रपति मादुरो के आरोपों को आधारहीन बताया है, लेकिन वेनेजुएला के एक विद्रोही संगठन सोल्जर्स इन टी शर्ट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इस संगठन का कहना है कि उन्होंने विस्फोटकों से लदे 2 ड्रोन विमानों को मादुरो की ओर भेजने की योजना बनाई थी, लेकिन सेना ने उन्हें मार गिराया। वहीं वेस्ट ऑफ इंग्लैंड यूनिवर्सिटी में एयरो स्पेस इंजीनियरिंग विषय पढ़ाने वाले प्रोफेसर स्टीव राइट ने कहा है कि इस अटैक में कोई भी चौंकाने वाली बात नहीं है। ये ड्रोन हमले जैसा लगता है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जब मुझे इस बारे में पता चला तो मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे फिलहाल टाला नहीं जा सकता। ये ड्रोन हमले जैसा लगता है, लेकिन मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जब मुझे इस बारे में पता चला तो मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे फिलहाल टाला नहीं जा सकता, क्योंकि ड्रोन एक ऐसी चीज़ है जिसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से खरीदा जा सकता है और उस पर विस्फोटकों को आसानी से लगाया जा सकता है। ये थे प्रोफेसर स्टीव राइट के शब्द। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इस हमले के बाद कहा है कि उन पर हमले की साजिश रचने वालों में से कई लोगों को पकड़ लिया गया है और जांच जारी है।
रिपोर्ट सुना रहे थे अनंत प्रकाश। अगली खबर भारत प्रशासित कश्मीर से। सुप्रीम कोर्ट में कल आर्टिकल 35 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होनी है। इसके विरोध में आज से कश्मीर घाटी में 2 दिवसीय बंद बुलाया गया। कई इलाकों में बंद का असर देखा गया। जम्मू से भी बंद की खबरें मिली हैं। श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
ये प्रदर्शन मार्च श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक में आर्टिकल 35 की मान्यता को सुप्रीम कोर्ट में कानूनी चुनौती देने के खिलाफ व्यापार मंडल की तरफ से आयोजित किया गया था। इस प्रदर्शन मार्च में कई व्यापार संगठनों ने भाग लिया। कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस के अध्यक्ष मोहम्मद यासीन खान का कहना था,
आज का प्रोटेस्ट 35A को डिफेंड करने के बारे में है, जिसके हवाले से 2 दिनों की हड़ताल की कॉल दी गई है। एतवार और सोमवार की कॉल की हड़ताल दी गई है, उसी हवाले से आज यहाँ पे बैठे हैं और हमारी जो कानून है उनको आप फील्डिंग करके हमें कमजोर करना चाहते हैं, या मसले कश्मीर की जो पोजीशन है उसको आप कमजोर करना चाहते हैं, वो हम नहीं होने देंगे।
इसी तरह घाटी के दूसरे इलाकों में भी आर्टिकल 35A की मान्यता को सुप्रीम कोर्ट में कानूनी चुनौती देने के खिलाफ प्रदर्शन रैलियां निकाली गईं। दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग में भी ट्रेडर्स यूनियन ने एक प्रदर्शन रैली का आयोजन किया था। कश्मीर के अलगाववादियों ने इस मुद्दे पर इतवार और सोमवार को कश्मीर बंद बुलाया है। अलगाववादियों की बंद कॉल के चलते कश्मीर में इतवार को गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित रही और साथ ही घाटी में दुकानें और दूसरे कारोबारी इदारे भी बंद रहे। उधर जम्मू क्षेत्र में भी कई इलाकों में कारोबारी इदारे बंद रहने की खबरें हैं। बीते कई दिनों से कश्मीर घाटी में इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। अलगाववादियों के अलावा राज्य में आम धारे के राजनीतिक दल पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी आर्टिकल 35 ए की मान्यता को सुप्रीम कोर्ट में कानूनी चुनौती देने के खिलाफ शनिवार को प्रदर्शन मार्च किया था। वर्ष 2014 में दिल्ली की एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर जम्मू कश्मीर राज्य से आर्टिकल 35 ए की मान्यता की कानूनी हैसियत को चुनौती दी थी। दरअसल आर्टिकल 35 ए से जम्मू कश्मीर के नागरिकों को विशेष दर्जा हासिल है। आर्टिकल 35 ए जम्मू कश्मीर से बाहर रहने वाले लोगों को जम्मू कश्मीर राज्य में जमीन या इमूवेबल जायदाद खरीदने से रोक देता है। सुप्रीम कोर्ट में कल यानी सोमवार को आर्टिकल 35 ए पर सुनवाई होनी है। माजिद जहांगीर, बीबीसी श्रीनगर।
और अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मुगल सराय स्टेशन का नाम बदल गया है। अब ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के नाम से जाना जाएगा। इस बदलाव के लिए स्टेशन पर आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रेल मंत्री पीयूष गोयल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने असम के नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी का मुद्दा भी उठाया और कांग्रेस पर तीखा हमला किया। अमित शाह ने क्या कहा वो सुनिए।
आसाम में से बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने की व्यवस्था। ममता बनर्जी कहती है एनआरसी नहीं होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी कहती है एनआरसी नहीं होना चाहिए। मैं चार दिन से बुमे लगाकर पूछता हूं राहुल बाबा को कि आप बताओ इस देश
केंद्र सरकार की नाकामियों से ध्यान हटाना चाहती है। और अब खास मुलाकात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा है कि उन्होंने एक बीमारू प्रदेश को विकास के रास्ते पर ला दिया है, लेकिन विरोधी कई मुद्दों पर उन्हें नाकाम बताते हैं। इस साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और विरोधियों के हमले तेज हो गए हैं। हमारे साथी प्रदीप कुमार ने शिवराज सिंह चौहान से खास बातचीत की और तमाम सवाल उनके सामने रखे। प्रदीप कुमार ने सबसे पहले पूछा कि आखिर वो एक बार फिर सत्ता में वापसी का दावा किस आधार पर कर रहे हैं।
देखिए, सबसे बड़ी चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया था मध्य प्रदेश को, ना सड़क बची थी, ना बिजली मिलती थी, ना पानी का इंतजाम था। हमने पूरी स्थिति को बदल दिया। बीमारू मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश के रूप में विकसित करने का, डेवलप करने का हमने प्रयास किया। और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, लोगों को भी ये सारी चीज़ें सुविधाएं मिल रही है। दूसरी बात आप देखेंगे जन कल्याणकारी योजनाएं अनेकों लोगों की जिंदगी बदलने की कोशिश की, जैसे गरीबों की जिंदगी बदलने के लिए संबल योजना, इसमें गरीब को सारी सुविधाएं, शिक्षा की, बिजली सस्ती हो, पक्का मकान बन जाए इत्यादि, जो मैंने पूरी जानकारी दी। और वैसे किसान को पसीने की पूरी कीमत, ठीक दाम, समाज के हर वर्ग का बेहतर कल्याण करने की कोशिश की है। महिला सशक्तिकरण के लिए अनेकों कदम उठाए हैं। जन्म लेने से लेकर अंतिम सांस लेने तक की सारी व्यवस्था करने की कोशिश की है। तो यही विकास और जन कल्याणकारी कामों के कारण फिर जनता का आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है।
आपने जिन योजनाओं की चर्चा की वो ठीक है, आप काम कर रहे हैं तभी आपको इतना सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन इस प्रदेश के बाहर जो जनता है वो मध्य प्रदेश को इस रूप में देखती है कि महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित राज्य है।
आप माताएं बहनों से बात कीजिए, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है तो बहनों और बेटियों का मिल रहा है, क्योंकि वो जानती है कि उनके सशक्तिकरण के लिए जो काम मध्य प्रदेश में हुआ है पहले कभी नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ।
एक आरोप जो है वो ये भी लगता रहा है कि आपकी जितनी जन कल्याण योजनाएं हैं वो सब ऐसा है कि लोगों की आर्थिक मदद करती है और उससे जो है सरकार के खजाने पे बोझ बढ़ता है और कई बार ओवरड्राफ्ट जैसी स्थिति है।
ना तो ओवरड्राफ्ट है, ना खजाने में कोई कमी है, और जहाँ तक खजाने पे बोझ पड़ता तो खजाना है काहे के लिए, जनता के लिए तो है, धरने के लिए थोड़ी हम कुछ सेठ थोड़ी के रख के बैठ जाए उसको, जनता ही के कल्याण पे खर्च कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी बदले इसके लिए खर्च कर रहे हैं पैसा है इसलिए। एक चीज मैंने जरूर की है कि मैं विकास तो करूंगा लेकिन गरीबों की जितनी आबादी उस अनुपात में गरीबों पे की कल्याण पर भी मैं पैसा खर्च करूंगा। आमतौर पर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया गरीबों।
आप 15 सालों से इस देश की जनता ने आपको हाथों हाथ लिया है, लेकिन अगर 15 साल शासन करने के बाद भी यही स्थिति है कि आप लोगों की आर्थिक मदद करते रहे
तो एक तो मैं बताऊँ पर कैपिटा इनकम 13,000 थी, मध्य प्रदेश 13,000 से 13,000 से बढ़ के 79,000 हो गया रुपीज 79,000, 5 गुना से ज़्यादा बढ़ गई है पर कैपिटा इनकम। लेकिन वो भी इतनी नहीं है कई लोगों के लिए, क्योंकि ये तो एवरेज है, कई इस एवरेज के नीचे है। तो विकास का प्रकाश सब तक पहुँचे ये जरूरी है ना, केवल विकास थोड़ी, इसलिए जो नीचे हैं उनके हम मदद करते हैं, लेकिन अल्टीमेट हम ये चाहते हैं कि वो भी आर्थिक रूप से संपन्न हो।
एक जो आपकी अभी योजना है जिसका आप जिक्र अभी कर रहे थे पिछली सभा में, संबल योजना, जिसमें आपने ऐसा कर दिया है कि वो गरीब लोगों का बिजली का बिल आप एक तरीके से माफ़ कर रहे हैं, अब उसके लिए 2 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिए है, 8 करोड़ की आबादी और 2 करोड़ रजिस्ट्रेशन।
केवल गरीब नहीं आर्थिक रूप से कमजोर, उसमें किसान भी शामिल है 2.5 एकड़ तक का, उसमें छोटे सब्जी फल बेचने वाले, चाय का ठेले, पान की गुमटी वाले, जो छोटे पंचर जोड़ने वाले इस तरह के, वो छोटे से दुकानदार भी सम्मिलित हैं। वो केवल BPL नहीं है, वो निम्न मध्यम वर्ग की भी मदद करने का प्रयास।
सर आप बता रहे थे कि किसी के वो छोड़ा नहीं है, हर गरीब किसान सबके लिए कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि इन्वेस्टर समिट्स आपने भी किया है, अगर उसकी बात करें तो क्या प्रदेश में उस तरह का निवेश हुआ है जिससे आप विकास की पटरी पे ला?
पिछले 2 साल मतलब जब हमने 2016 में जो इन्वेस्टर समिट की थी और उसके पहले 2014 में की थी, 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश आया है। अब देखेंगे IT कंपनी TCS इन्फोसिस सबके कैंपस इंदौर में बनकर तैयार हो गए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बड़ी तेजी से मध्य प्रदेश में आई है।
आप अपने काम की बात तो कर रहे हैं लेकिन कुछ एक आरोप ऐसे भी हैं जैसे व्यापम का मसला है, हालांकि CBI ने आपको बरी कर दिया और उसकी जांच भी चल रही है, लेकिन
बरी आप सब इसलिए मत कहिए कि कुछ है नहीं, बरी क्या करेंगे। सच ये था कि मैंने कांग्रेस के जमाने में ट्रांसपेरेंट परीक्षा नहीं होती थी, मैंने सिस्टम बनाया, यहाँ तो नेताओं की स्लिप का होता था उस जमाने में, तो सिस्टम में गड़बड़ हुई तो मैंने पकड़ा और मैंने जांच करवाई और जिनने गड़बड़ की उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई। वो तो सब मेरा किया हुआ था, कांग्रेस ने अनावश्यक उस पर बवाल मचाने की कोशिश की, अंततः सारा सत्य जनता के सामने पहले से ही था। वो तो कोई ऐसा आरोप नहीं है कि जिसमें कोई चीज गंभीर हो, सिद्ध हो, प्रमाणित हो, आरोप तो लोग लगाते रहते हैं, इतना जरूर है कि कोई गड़बड़ करेगा तो हम कभी छोड़ेंगे नहीं।
बाहर में आपकी वो तस्वीर जो है वो ज्यादा चर्चा में है जिसमें आपको कांस्टेबल उठा के चल रहे हैं, तो ऐसी सड़कें जो है वो बाद में आपने फिगर आउट किया कि
उससे सड़क नहीं थी, नदी में बाढ़ थी, मैं बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा करने गया था, एक गाँव दूसरी तरफ था और पुल पे पानी था, तब उन लोगों ने मुझे वहाँ से उठा के सुरक्षा की दृष्टि से, उनको लगा कि ये पैदल जाएं तो पैर ना फिसल जाए और नदी में नहीं बह जाए, तो उन्होंने उठा के उधर कर दिया मुझे।
कांग्रेस आपको चुनौती नहीं दे पा रही है, उसकी कोई वजह एक बतानी हो तो क्या बताएंगे आप?
अब ये तो वो बताइए, मैं क्या बताऊँ, मेरी शुभकामनाएं उनको।
लगता है कि उनकी पार्टी एकजुट होकर आपका मुकाबला नहीं कर पा रही है?
अब ये तो उनका विषय है, कितनी कांग्रेस, कौन की कांग्रेस है, कैसी कांग्रेस है, वो भी छात्र।
चुनावी बात हो रही है आपसे तो 2019 की चर्चा जरूरी बन जाती है, 2019 में क्या होगा?
श्री नरेंद्र मोदी जी पिछली बार से भी ज्यादा सीटें लेके लोकसभा में और फिर भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे।
एक आखिरी सवाल, आप में भी सेंट्रल लीडरशिप को लेके एक संभावना देखी जाती थी, हालांकि अब आपने उसको बहुत मतलब कहिए कि सहजता से माना नहीं और माना कि मध्य प्रदेश की जनता को ही सेवा करना है, आगे कोई ऐसा चांस?
हमने कभी ना सोचा ही नहीं है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पार्टी ने दायित्व दिया मध्य प्रदेश का और मैं अंतरात्मा से अपनी मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता से जुड़ा हूँ, मेरी जिंदगी का आनंद अपनी जनता की सेवा में है और मैं उस काम में लगाऊंगा।
ये थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनसे बात कर रहे थे प्रदीप कुमार। और अब बात उत्तराखंड की, जहां लोगों के लिए मौसम चुनौती बन गया है। कर्णप्रयाग में तेज बारिश की वजह से कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। ज्यादा जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं रोहित जोशी। जी रोहित, क्या खबर है उत्तराखंड के मौसम को लेकर?
वात्सल्य जी, यहाँ पिछले 36 घंटों से जो तेज बारिश कई इलाकों में हो रही है पूरे उत्तराखंड में
जी,
और उसी मतलब उसकी वजह से कई जगहों से आपदा की खबरें हैं, जैसे भूस्खलन, जल भराव और लोगों के मकान ध्वस्त होने की खबरें हैं। इन्हीं में से एक खबर चमोली जिले के, जिसका आपने जिक्र किया, सोनाली गांव से है, और वहां पर एक मकान और एक गौशाला बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस दुर्घटना में दो गायें मारी गई हैं और दो महिलाएं जो हैं वो घायल हुई हैं। इसी तरह से एक खबर बागेश्वर जिले से भी आ रही है कि तीन अलग अलग घटनाओं में मकान ढह गए हैं। बागेश्वर वो जिला है जहां इस बार काफी तबाही पहले भी होती रही है इस मानसून में। और इस तरह से पूरे कुमाऊं में पिछले दो दिन में 100 mm की से अधिक की बारिश कई जगह दर्ज की गई है
जी। फिलहाल क्या स्थिति है? फिलहाल क्या अभी बारिश हो रही है, थम गई है? आप जिस जगह पर हैं, आप सुरक्षित हैं या नहीं?
मैं नैनीताल जिले में हूं और नैनीताल जिले में सुबह से बहुत तेज बारिश थी और अभी कुछ समय से, पिछले आधे घंटे से बारिश रुकी हुई है, हालांकि अभी भी रिमझिम बारिश जारी है इधर
जी। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है अगले 48 घंटों के लिए, क्या इसके बारे में आपके पास जानकारी है? किसी अधिकारी से आपकी बात हुई है?
हाँ, मेरी दरअसल मौसम विज्ञान केंद्र ने एक प्रेस रिलीज प्रॉपरली जारी की है इस पर कि अगले 48 घंटों में जो 8 जिले हैं उत्तराखंड के, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, चमोली, नैनीताल, उधमसिंह नगर और पिथौरागढ़, इन 8 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और इसके चलते जो इन जिलों के जिलाधिकारी हैं उन्होंने अपने अपने जिलों में स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। और इधर जो राजधानी देहरादून है यहाँ भी लगातार बारिश पिछले 36 घंटों से चल रही है और जो रिस्पना और बिंदाल नदी है वहाँ की, वो उनमें काफी उसका जल स्तर बढ़ जाने से काफी इलाकों में जल भराव की स्थिति यहाँ हो गई है
जी। रोहित, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, लगातार अलर्ट बना हुआ है, लोगों को किस तरह से सावधान रहने के लिए कहा गया है और जो रोजमर्रा की उनकी जरूरतें हैं वो कैसे पूरी की जा रही हैं?
देखिए, रोजमर्रा की जरूरतें तो वाकई में जो 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 क्योंकि सड़कें बहुत ज्यादा बाधित हुई हैं, आज भी नंदप्रयाग इलाके में जो भारी भूस्खलन हुए हैं, उसके बाद ऋषिकेश बद्रीनाथ जो NH है वो भी बाधित हुआ है। इसी तरह से चारधाम प्रोजेक्ट की वजह से आजकल वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अधिकतर सड़कों में, तो वहाँ भी बहुत ज्यादा क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत डिस्टर्ब हुई है पूरे उत्तराखंड में। और इंटीरियर जो इलाके हैं, जो हायर हिमालयाज के इलाके हैं, वहाँ तो मतलब इतने रास्ते टूटे हैं कि अब कनेक्टिविटी रहने की तो वहां तो खबरें भी नहीं आ रही हैं कि वहां की स्थितियां क्या हैं। तो इस वजह से, और जब कनेक्टिविटी टूटी है तो वहां पर जो जो सामग्री है वो भी सप्लाई नहीं हो पा रही, तो उस वजह से भी काफी दिक्कतें लोगों को सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच एक पॉजिटिव खबर ये आई है मौसम विभाग की तरफ से कि इससे पहले खबर आ रही थी कि इस बार हम मानसून डेफिसिट में चल रहे हैं, हालांकि तबाही हमारे यहाँ बहुत हुई उत्तराखंड में, लेकिन मानसून में बारिश कम दर्ज की जा रही थी, चाहे उससे तबाही ज्यादा हो रही है,
उसकी भरपाई
बारिश हुई है उसकी, इस हफ्ते की बारिश से उसकी भरपाई हुई
जी। बहुत शुक्रिया रोहित जोशी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपडेट के लिए। और अब चीन से विशेष श्रृंखला की आज की कड़ी। महात्मा गांधी कभी चीन नहीं गए, लेकिन ब्रितानी साम्राज्य के खिलाफ आंदोलन में उनकी भूमिका पर चीन में कई लोगों की नजर थी। ये लोग गांधी के अहिंसा के सिद्धांत से बेहद प्रभावित थे। BBC संवाददाता विनीत खरे चीन के आनहुई प्रांत में एक ऐसी महिला से मिले जिन्होंने न सिर्फ गांधी की किताबों और लेखों का चीनी भाषा में अनुवाद किया है, बल्कि जो खुद गांधी के सिद्धांतों पर जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं।
शहर की भीड़, कंक्रीट के जंगलों से दूर कुदरत की गोद में बसा हुआंगथियान गांव, महात्मा गांधी से प्रेरणा लेकर 57 वर्षीय वू पेई ने यही रहने का फैसला किया। वु पेई कहती हैं,
सिंपल लाइफ,
मैं महात्मा गांधी की तरह सादगी से जीवन जीती हूँ। मैं AC, वॉशिंग मशीन, फ्रिज का इस्तेमाल नहीं करती। मैं पुराने कपड़े पहनती हूँ और मैं शाकाहारी भी हूँ।
फिजिक्स में मास्टर्स वु पेई की जिंदगी साल 2002 में उस दिन बदली जब राजधानी पेचिंग में उन्होंने एक भारतीय वक्ता का भाषण सुना।
उन्होंने गांधी के आदर्शों के बारे में बताया और कहा कि गांधी कहते थे कि सच्चाई को सिर्फ काव्यात्मक तरीके से ही व्यक्त किया जा सकता है। इन बातों ने हम पर गहरा प्रभाव डाला और हमने गांधी के बारे में और जानने का निर्णय किया।
गांधी के बारे में पढ़ने के अलावा पिछले साल उन्होंने एक स्कूल की शुरुआत की ताकि बच्चों को कुदरत के नजदीक लाया जा सके।
मैं बच्चों को सिखाती हूँ कि वो हर जीव को प्यार करें, वो गांव के लिए अच्छा काम करें, कूड़ा इकट्ठा करें, अगर लोग अकेले हैं तो वो उनके घरों में उनसे मिलने जाएं।
लेकिन चीन में कई लोग महात्मा गांधी के सिद्धांतों से सहमत नहीं हैं। वु पेई कहती हैं,
एक दिन जब मैंने अहिंसा और गांधी के बारे में बात करनी शुरू की तो लोगों ने मुझसे कहा कि मैं बहुत आदर्शवादी हूँ और चीन में ऐसा नहीं हो सकता। चीन में गांधी के बारे में बहुत कम जानकारी है। भारत की तरह चीन में भी कई लोग अहिंसा पर गांधी से सहमत नहीं है।
वु पेई ने अपना जीवन स्कूल को समर्पित कर दिया है, लेकिन उनका सपना है कि वो एक दिन महात्मा गांधी के जन्म स्थान भारत जरूर आए। विनीत खरे, बीबीसी, हुआंगथियान गांव, चीन।
चीन से विनीत खरे की ये विशेष श्रृंखला आप इस पूरे हफ्ते सुनेंगे। और अब खेल की खबरें। स्टूडियो में आ चुके हैं आदेश कुमार गुप्त।
जी वासल, चीन को लेकर तो सबके मन में सपने ही रहते हैं, लेकिन चीन की दीवार अपने आप में बहुत विशेष है और आज चीन की दीवार की तरह ही साबित हुई स्पेन की कैरोलिना मारिन, जिन्हें विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में 7वीं वरीयता हासिल थी और उन्होंने 3री वरीयता हासिल यानी कि अपने से कहीं ज़्यादा रैंकिंग वाली भारत की पीवी सिंधु का सपना चैंपियन बनने को जो था उसे तोड़ डाला।
जी आपको उम्मीद थी सिंधु से, ओलंपिक की हार का बदला देखना चाह रहे थे, एक मायूसी आपके चेहरे पर मैं देख रहा हूँ।
जी हाँ, 21-19, 21-10 से हराया और क्या लाजवाब खेल था मारिन का, बहुत ही शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया।
लेकिन विराट कोहली ने आज आपको खुश किया है।
जी हाँ, वो विश्व में नंबर एक टेस्ट बल्लेबाज बन गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी रैंकिंग तो नंबर वन रहे, साथ ही साथ भारत और इंग्लैंड के बीच जो सीरीज़ खेली जा रही है वहाँ पर भी भारत टेस्ट मैच में पहले बराबरी करे और उसके बाद सीरीज जीत कर दिखाए, तो फिर ऐसा लगेगा कि जैसे सोने पर सुहागा। लेकिन अच्छी बात है कि इतने लंबे समय बाद भारत का कोई खिलाड़ी टेस्ट रैंकिंग में नंबर एक बना है। उधर अगर लंदन की ही बात की जाए तो भारतीय हॉकी टीम का तो बहुत ही ख़राब प्रदर्शन रहा महिला विश्व कप में, क्योंकि वो 8वें पायदान पर रही, लेकिन आज इसका फाइनल नीदरलैंड्स और आयरलैंड के बीच खेला जाएगा। और अगर क्रिकेट की बात को जारी रखें थोड़ा सा, तो दक्षिण अफ्रीका ने आज पल्लेकल में खेले गए तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेज़बान श्रीलंका को 78 रन से हरा दिया। श्रीलंका के सामने जीत के लिए 364 रनों का लक्ष्य था, लेकिन वो 45.2 ओवर में 285 रन पर सिमट गई। दक्षिण अफ्रीका के लुंगी अंगीदी ने 57.4 और फेलकुआव ने 74.3 विकेट हासिल किए। वहीं बांग्लादेश ने फ्लोरिडा में खेले गए दूसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 12 रन से हरा दिया। इस मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर कप्तान शाकिब अल हसन के 60 रन की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 171 रन बनाए और उसके बाद वेस्टइंडीज को निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 159 रन से रोक दिया। और जहां तक बात है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की, तो ये भी बता दें आपको कि यहां पुरुष एकल वर्ग का फाइनल 3री वरीयता हासिल चीन के शी युकी ने, 6ठी वरीयता हासिल जापान के केंटो मोमोता को 21-11, 21-13 से हराकर अपने नाम किया।
बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त पूरे अपडेट के लिए। और चलते चलते मुख्य समाचार कुलदीप मिश्र से।
बीबीसी समाचार। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा है कि विस्फोटकों से लदे ड्रोन विमानों के जरिए उनकी हत्या की कोशिश की गई और इसके जिम्मेदार लोगों को वो माफ नहीं करेंगे। दक्षिणी सूडान में वर्षों से जारी गृहयुद्ध को खत्म करने के लिए विद्रोहियों और सरकार के बीच सत्ता में साझेदारी का समझौता किया जाना है, लेकिन इसे कुछ घंटों के लिए टाल दिया गया है। स्विट्जरलैंड पुलिस ने बताया है कि एक पुराना सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार सभी 20 लोगों की मौत हो गई है। यह घटना शनिवार की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने बताया कि 1939 में बना यह विमान पहाड़ी इलाके पिज सेग्नेस के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बांग्लादेश में सड़कों पर सुरक्षा को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के 8वें दिन पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागे। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे दीपक जसरोटिया। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।